की ओर से विनती कि स्वामी अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को प्रताप करने की अनुकंपा करें। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की,
परम पूज मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज मुन्ना श्री भव्य सागर जी महाराज की।
हम सभी लोग तीर्थंकर प्रकृति किन भावों के द्वारा या किन भावनाओं के द्वारा अर्जित की जाती है इस पर विचार कर रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति भी एक कर्म प्रकृति है, कर्म शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। उनमें से सबसे शुभ कर्म प्रकृति तीर्थंकर कर्म नाम कर्म प्रकृति मानी गई, जिससे कि तीनों लोकों में पूज्यता प्राप्त होती है। तीर्थंकर ही एक ऐसे हैं जिनको तीनों लोकों में पूज्यता प्राप्त होती और तीनों लोकों का कल्याण करने वाली अवस्था उनको प्राप्त होती है। सामान्य रूप से और भी जीव अपने जीवन में अरहंत पद प्राप्त करते हैं, लेकिन तीर्थंकर की हैसियत से अरहंत पद प्राप्त करना अपने आप में एक बिल्कुल अलग ही चीज है। अपने आत्म कल्याण के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं उससे सिर्फ हमारा आत्म कल्याण हो, यह एक बिल्कुल अलग चीज है। और एक आत्म कल्याण की वह प्रक्रिया जिसमें कि प्राणी मात्र का कल्याण भी हो, जिसके गर्भ में आने से प्राणी मात्र का कल्याण, जिससे उत्पन्न होना है उसका भी कल्याण, जो उसके संपर्क में आए उसका भी कल्याण, ऑटोमेटिकली सिर्फ प्रेजेंस से, सिर्फ जिसकी उपस्थिति ही लोगों के लिए कल्याणकारी हो जाए, तो उस व्यक्ति का अपना क्या वैभव और क्या अपन उसका वर्णन कर सकते। तीर्थंकरों के बारे में तो आचार्य भगवंत जब भी कहते हैं तो कहते अचिंत्यम ई हितम। हमारी अपनी बुद्धि जिससे हम सोच पाते हैं, हमारी उस सोच के, हमारी उस पहुंच के बाहर है तीर्थंकरों का सारा कुछ, जो भी उनके जीवन की प्रक्रिया। ऐसी वो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति, अपन कम से कम तीर्थंकर ना बन पाए भैया, उतनी ऊंचाई पर ना पहुंच पाए, तो कम से कम उनके चरणों में अपनी श्रद्धा तो अपन व्यक्त कर ही सकते हैं, अपनी भावना तो अपन बना ही सकते हैं। 16 कारण भावना भाने से कोई तीर्थंकर बने तो ठीक है, लेकिन 16 कारण भावना भा करके और हम कम से कम अपनी विनय और तीर्थंकरों के चरणों में व्यक्त कर सकें, इतना पुरुषार्थ तो अपन आज भी कर सकते हैं। वो ही अपन कर रहे हैं कि उन 16 कारण भावनाओं में एक भावना है शक्ति तस्त्याग, आज अपन उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। शक्तिम अनुल्लंघ्य यथाशक्ति, जिसमें शक्ति का उल्लंघन नहीं किया जाए और शक्ति को छिपाया नहीं जाए उसे कहते हैं यथाशक्ति। शक्ति तस्त्याग, अकेला त्याग क्यों नहीं लिखा? उत्तम त्याग कहते थे, उत्तम त्याग धर्म भी एक धर्म है, लेकिन 16 कारण भावनाओं में कह रहे हैं शक्ति तस्त्याग, अपनी शक्ति को नहीं छुपा करके और अपनी शक्ति का उल्लंघन किए बिना, दोनों कंडीशन है। ये कौन पहचानेगा कि मेरी शक्ति कितनी है? कई बार हम ऐसा करते हैं कि दूसरे को चमत्कृत करने के लिए अपनी शक्ति से अधिक त्याग कर देते हैं, कहते ये नहीं चलेगा काम। हां, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे संपर्क में आ जाते हैं कि हमारे अंदर शक्ति होते हुए भी उत्साह नहीं रहता त्याग करने का, कहते ऐसे भी नहीं चलेगा काम। शक्ति को छिपाना भी नहीं, शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना, अपनी शक्ति को पहचानना कि हमारी अपनी शक्ति कितनी है, हम किस तरह से त्याग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अकेले इससे काम नहीं चलेगा। ये त्याग अकेला उत्तम त्याग में तो ठीक है, अपन ने छोड़ दिया जो कुछ भी, या कि चार प्रकार का दान दे दिया, दान चार प्रकार चार संघ को दीजिए, धन बिजली उन्हार नर भाव लाहो लीजिए। इस नर भाव का जो लाभ है, जो उसकी सार्थकता जिसमें है वो कर लीजिएगा, ये उत्तम त्याग हो गया। लेकिन यहां पर कह रहे हैं परप्रीति करण अतिसर्जनम त्याग शक्ति तस् त्याग, एक और कंडीशन लगा देते हैं। तीर्थंकर प्रकृति तो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाए बिना नहीं होगी, पूरी श्रद्धा के साथ ये साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपर के भेद विज्ञान के साथ, वीतरागी देव गुरु शास्त्र की सच्ची आस्था के साथ, ये सारी उसके साथ स्थितियां जब बने और फिर हमारे अंदर त्याग की कैसी भावना, पर प्रीति करण अतिसर्जनम, अपना जो कुछ भी त्यागा जाए वो दूसरे की प्रीति प्राप्त करने के लिए त्यागा जाए। बताइए आप, ऐसा लिखा आचार्यों ने। और देख लो आप, किसी को कुछ देते हैं तो जब तक अंतरंग से उसके प्रति अनुराग नहीं उमड़ता तब तक वो दी हुई चीज कोई मायने नहीं रखती। आप खूब बड़ी चीज भी दे दो और अगर आपके भीतर उस व्यक्ति के प्रति, उसके गुणों के प्रति अनुराग नहीं है तो वो भी समझता है कि इनने तो हाँ ठीक है। और अगर कोई बहुत बड़ी चीज ना दे के एक छोटी सी चीज भी देवे लेकिन उसके साथ उसका प्रेम जुड़ा हुआ है, उसका अनुराग जुड़ा हुआ है, तो वो छोटी सी चीज भी अपन कैसे संभाल के रखते हैं। उन्होंने दी थी हमें, हमारे बहुत आत्मीय हैं वे, उनके द्वारा दी है, वह तो बहुत छोटी सी। एक कागज पर दो शब्द लिख दिए हैं वो भी बहुत बड़ी गिफ्ट हो जाएगी, वो भी बहुत कीमती उपहार हो जाएगी। कोई चीज उपहार कब बनती है? कोई भी चीज दान देने के योग कब बनती है? दान तो बहुत लोग देते हैं, त्याग बहुत लोग करते हैं तब, लेकिन वो त्याग और वो दान कब हमारी अपनी भावनाओं को निर्मल करता है? जब उसके पीछे हमारे भावनाओं में निर्मलता होती है, हमारी भावनाएं, हमारा अनुराग जब उसके गुणों के प्रति होता है तब दी हुई चीज उपहार हो जाती है, वरना तो कोई मायने नहीं रखती। तो इसीलिए शायद 16 कारण भावनाओं में शक्ति तस् त्याग भावना की परिभाषा लिखते समय में सोचता रहा कि क्या आवश्यकता थी, सीधा कह देते जैसे लिखा है अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। यहां वही बात क्यों ना लिख के दूसरे ढंग से क्यों लिखी, पर प्रीति अतिसर्जनम, दूसरे के अनुराग को प्राप्त करने के लिए, इतना ही नहीं दूसरे के गुणों के प्रति अनुराग रखते हुए, दोनों ही स्थितियां बन गई। आप जिसे दे रहे हैं वो पा करके आनंदित है और कृपा मान रहा है और देने वाला इसलिए आनंदित है कि आपने स्वीकार कर लिया। आप अगर इनकार कर देते तो हम क्या कर लेते। देने वाला ये मान रहा है कि जैसे मैंने कुछ नहीं दिया, और पाने वाला ये मान रहा है कि जैसे मैं योग नहीं था फिर भी मैंने बहुत पा लिया। बताइए तब देना पाना सार्थक होगा। ऐसे त्याग की चर्चा है। देने वाले को कोई अहंकार नहीं है कि मैं देने वाला, वो कह रहा है कि नहीं आपने ले लिया, ये कृपा आपकी। और पाने वाला ये कह रहा है कि मेरी योग्यता थी कब जो आप दे रहे हैं मुझे, मैं इतना अयोग्य फिर भी आप मुझे दे रहे हैं, आपकी कृपा। बताइए ऐसा कोई म्यूचुअल बेनिफिट का अगर काम होता है तो वो सब त्याग और दान कहलाता है। ऐसा म्यूचुअल बेनिफिट जिसमें पारस्परिक उपकार है तब बनती है तीर्थंकर प्रकृति। लेकिन इसके साथ और कोई शर्त नहीं है। अगर इस दान और त्याग के साथ और कोई शर्त लगा दी जाए या कोई तर्क लगा दिया जाए तो नहीं चलेगा। जो है उसे छोड़ देना, ये त्याग की परिभाषा है, ये उत्तम त्याग है। जो चीज है जिससे हमारा कल्याण होता है उसको छोड़ देना, ये त्याग है। लेकिन शक्ति तस त्याग 16 कारण भावनाओं में बिल्कुल अलग चीज कह रहे हैं। अपनी आत्म संपत्ति पहचान ली है इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है जो कि व्यर्थ है। व्यर्थ को तो दुनिया छोड़ देती है। घर में कचरा कूड़ा इकट्ठा हो जावे तो कौन नहीं बाहर फेंक के जाता, बिना बताए फेंक जाता है। कोई देख लेवे तो शर्म आती है, है? न देखे तो अच्छा लगता है कि कोई महूत निकलवा उसके जो कचरा कबे फेंके, महूत तो निकलवा लो। ऐसा करता है क्या? पूछ तो लो कि फेंके कि नहीं, चार जने देख रहे कि नहीं, वो वीडियो बार आओ कि नहीं आओ, फोटो खींच ले, हम तो फेंक रहे, त्याग कर रहे हम। ऐसा करते हैं क्या? नहीं, निस्सार है। उस निस्सार को हमें छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अकेले निस्सार को छोड़ देना नहीं, मैंने सारभूत पा लिया है इसलिए अब निस्सार तो मेरे से छूट ही गया है, मेरे अंदर छोड़ने का कोई अहंकार ही नहीं है। बताइए आप, आचार्य महाराज शक्ति तस्त्याग की व्याख्या करते हुए यहां से शुरू करते हैं कि चूंकि त्याग इसलिए घटित हुआ है क्योंकि निजी संपदा उससे मालूम पड़ रही कि मेरी निजी संपदा तो ये है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया, वो तो छूट ही गया, वो मेरा था ही नहीं, मैं जबरदस्ती उसको पकड़े हुए था, मैं अपना माने हुए था, मुझे अपनी निजी संपदा मालूम पड़ गई इसलिए। और वो कब मालूम पड़ती भैया? वो मालूम पड़ती है वीतरागी के प्रति श्रद्धान से। इसलिए पहली कंडीशन, अपनी शक्ति को नहीं छिपा करके तो शक्ति कौन पहचानेगा? जब तक आप किसी के चरणों में जाके नहीं बैठेंगे शक्ति नहीं मालूम पड़ेगी आप। हाँ, ऐसे तो अपने को अपनी शक्ति नहीं मालूम पड़ती है। तो कह रहे हैं कि आस्था पूर्वक त्याग के साथ देखो कितनी बातें हो गई। दूसरे की प्रीति उत्पन्न होनी चाहिए, दूसरे के गुणानुराग से हमने दिया है और दूसरे को भी लाभप्रद हो रहा है तब वो त्याग कहलाएगा। इतने ही नहीं, अपनी आत्म संपदा पहचान ली है तब वो त्याग सही कहलाएगा। और इतने ही नहीं, आस्था पूर्वक दिया गया होगा, भेद विज्ञान पूर्वक दिया गया होगा तभी। मिथ्या दृष्टि ऐसी भावना भावे तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती। सम्यक दृष्टि होवे फिर ऐसी भावना भावे तब जाकर के। सम्यक दृष्टि के मायने क्या? वीतरागता के प्रति हमारे मन में आस्था है, अपने उस वीतराग स्वभाव के प्रति भी। और जिनने वीतराग स्वभाव प्राप्त कर लिया, जो प्राप्त करने में लगे हैं या जो उसका उपदेश देते हैं, उन सब के प्रति मेरे मन में आस्था है, उन सब के प्रति मेरे मन में अनुराग है। उस अनुराग के साथ साथ अब जो है ये त्याग अगर घटित होता है, जैसे कि माँ जानती है कि किस बेटे को क्या देना है। छोटा बेटा फौरन दूध मांगने आता तो उसको थोड़ा पानी मिला के देती, और बड़ा वाला आता तो उसको मलाई डाल के दे देती। अब देखा जावे तो पक्षपात है, साफ दिखाई दे रहा कि जी बेईमानी, एक ही माँ के दो बेटे और दोनों को अलग अलग दे रही। कहती भाई वो जानती है कि अगर जिद करे कि हमें दो मलाई, अरे तुम पानी डरो दूध तो पचा लो, फिर मलाई की करियो चर्चा। बड़ा भैया तो काम करता है, मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, उसको वो जरूरी है, तुम्हें तो अभी क्या करना है, छोटे हो तुम उतना ही पचा नहीं पाओगे। ऐसे ही अगर किसी गुरु के चरणों में बैठ करके फिर अगर त्याग घटित होगा तो वो त्याग वास्तविक त्याग होगा, तो अपनी शक्ति का मालूम पड़ेगा। वहां जाके पहले अपनी श्रद्धा व्यक्त करना कि भगवान मेरी भावना ये है कि मैं ऐसा ऐसा चाहता हूं। वे जानते हैं जैसे मां जानती, ऐसे ही गुरु के चरणों में बैठ के लेंगे तो वे जानते हैं कि तुम्हारी कितनी शक्ति है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पूछेंगे, समझेंगे, समझाएंगे, तब जाकर के जो है और पूरी श्रद्धा से जो घटित हो। तीर्थंकर प्रकृति बांधनी है तो बिल्कुल अलग ही मामला हो। वैसे आपको अपने मन से चाहे जो त्याग करना शुरू करती रहो, उसकी कोई मनाही नहीं है। परोक्ष में भी लिया जाता है नियम, प्रत्यक्ष में ही लिया जाए ऐसा नहीं, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के लिए परोक्ष मामला नहीं चलेगा कि अपने घर में बैठ के तीर्थंकर के प्रति श्रद्धा रखें और हमने तो त्याग कर दिए। नहीं, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में बैठ करके शक्ति तस त्याग की भावना भानी पड़ेगी, कंडीशन है। हाँ, गुरु के निकट बैठ करके ही त्याग घटित होगा, तब वो त्याग जो है हमारे जीवन में तीर्थंकर प्रकृति के अर्जन करने में निमित्त बनेगा। दूसरे का उपकार करने वाला त्याग और अपने स्वयं का भी उपकार करने वाला त्याग ही वास्तविक त्याग है, जिसमें अहंकार है, जिसमें दूसरे को नीचा दिखाने का भाव है, या कि जिसमें अपने ही किसी लाभ के लिए छोड़ा जा रहा है, वो सब त्याग नहीं कहलाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से किया गया त्याग, बीमार सीमान ना हो जाए इसलिए किया गया त्याग, किसी शर्त और तर्क के सहित किया गया त्याग कोई काम नहीं आएगा। बेशर्त और बेतर्क है, श्रद्धा से समन्वित है जो त्याग, जिसमें दूसरे के उपकार की भावना है और अपना कर्तव्य मान करके किया जा रहा है, वास्तव में वो है शक्ति तस त्याग। वैसे अपन के देखने में आता है कि अपन त्याग करते हैं तो चाहते हैं कि हमें रिस्पांस मिलेगा, हमें थैंक्स मिलेगा, हमें लोग अच्छा मानेंगे, ऐसी भावना आ जाती है। हमारे त्याग को चार लोग देखेंगे तो वाह वाह ही करेंगे, नहीं आनी चाहिए। अगर आ जाती है तो बदलो इस आदत को, हमने तो अपने लाभ के लिए किया था, और इतने ही नहीं, मेरे इस त्याग से दूसरे को भी लाभ पहुंचे, मैंने इसका ध्यान रखा। एक बार की बात है, एक सेठ जी की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी दान देने की। यहां तो ऐसा कोई सेठ नहीं है जिसकी भावना नहीं होती, वो और कहीं के होंगे। और जो हम ये उदाहरण दूसरी जगह देते हैं तो वहां भी हम यही कहते हैं। तो वो उनकी बिल्कुल भावना नहीं होती थी, लोग उनको बड़ी हिराकत की नजर से देखते थे कि काय के पैसा वारे हैं, ढीला तो छूटत नहीं है इनसे है? तो ऐसा उनकी बड़ी निंदा करते थे लोग, उनको बिल्कुल भी मैंने सभा में आ जावे तो को रीझ बूझ तक नहीं आती कि तुम आगे आन के बैठ जाओ। बैठ गए सो बैठी रहो, तो जूतों की लगा बैठी तो बैठी रहो, काय का बास ने बुलावे हो, पैसा वारे सो रहे आओ। हाँ, लोग इतना उनको बिल्कुल नहीं देते। अब एक दिन की बात कि कोई एक विशेष पंडित जी आए, उनने दान पे भारी प्रवचन। अच्छा, लेकिन भगवान के प्रति उनके मन में भक्ति बहुत थी, ये बात तो थी। अब उस भगवान की भक्ति की वजह से वहां पर वो जो पंडित जी आए भी अच्छी भक्ति करवाते थे, गा बजा करके उसमें भी शामिल हुए, उसमें शामिल हुए, और उनका मन पता नहीं उस दिन कैसा हुआ, सो चांदी के सिक्कों की थैली रखे थे, सो ल्यान के सीधी पंडित के सामने खोल के उनने डाल दी। अब तो भाई पूरी सभा में जय जयकार मच गई, जो अभी तक जो है वो उनके लिए हिराकत से देखते थे, अरे इतने आओ सेठ जी, अरे इतने बैठो सेठ जी, इतने बैठो सेठ जी, उनको बिठाने लगे यहां पर। अब सेठ जी ने भी को भी अच्छा नहीं लगा कि देखो जय लोग कल तक जो है पूछते नहीं थे और आज हमने जो है
थोड़े पैसा दिए, माने सब जगह यही है, पैसा ही पैसा को खेल है और कछु नहीं। हाँ देखो इतने पैसा हमने फेंके, सब में फटाफट जो है सब जने हमें मान सम्मान करने लगे। तो उनके मन में ये बात आई और बैठ गए। पंडित जी से उनने पूछा ही, खड़े होकर के, पंडित जी देखो आपकी सभा में भी जो है पैसे ही को खेल है सब। तो पंडित जी ने क्या जवाब दिया, कहते सुनो सेठ जी, पैसा तो कल भी आपके पास है, तो उसका कोई सम्मान नहीं था, अगर उसका सम्मान होता तो कल भी सम्मान मिलता, सम्मान आज आपको आपके पैसा को नहीं मिलो, आपने अपनो पैसा त्याग करो वो को सम्मान मिलो। हमारे अंदर अगर ऐसी भावना है, हमारे अंदर त्याग की भावना है, तो कोई सम्मान दे या ना दे वो सम्मान हमें स्वतः मिलता है, कहीं मांगने नहीं जाना पड़ता। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि जब सम्मान मिलेगा तो त्याग करूंगा, हमारा सारा त्याग सम्मान की भावना पर निर्भर हो, त्याग की भावना नहीं रही उसमें। ये त्याग नहीं कहलाता, ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है कि 100 रुपया लगाओ 100 की चीज लौट के आई, गिव एंड टेक। ये एक नियम है आपके जो भी मार्केटिंग है उसका नियम है कि गिव एंड टेक, दो और पाओ। यहां ऐसा नहीं है, यहां तो सिर्फ दो, दो ही हाथ उलीजिए यही सयानो काम। यहां उस बुद्धिमानी उस विवेक की बात है जहां कि हम सिर्फ देने का आनंद लूटते हैं, जिसमें हम सिर्फ दे करके प्रसन्नता महसूस करते हैं और पाने वाला जिसने पाया है वो उसको कृपा मान करके और आनंद ले रहा है। और अगर दोनों ये मान ले गए कि मैं देने वाला इतना बड़ा और पाने वाला कहे कि तुमने क्या दिया, हमारी योग्यता से हमने पाया, तो दो ही गए काम से। पाने वाले को यह अहंकार है कि मैंने अपनी योग्यता से पाया है, तो ध्यान रखिए वो भी उसका पाना कोई मायने नहीं रखेगा। और देने वाला ये सोच रहा कि मैंने दिया है, तो भी ठीक नहीं भैया, देने वाला ये सोच रहा कि आपने मुझसे प्राप्त कर लिया, नहीं लेते तो क्या करता, और पाने वाला कह रहा है कि आपकी कृपा, आप नहीं देते तो क्या हुआ। इस तरह घटित होता है, जब इस तरह एक दूसरे के प्रति ऐसी भावना होती है परस्पर उपकार की, परस्पर एक धर्मानुराग की, तब जाकर के तीर्थंकर प्रकृति बनती है। अपन और विशेष ना कह के इतना ही, क्योंकि समय तो उतना हो ही जाता, अधिक समय न करके, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत सेइए, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद वेइए। इसमें सब बातें आ गई, निज पद वेइए, अपना स्वभाव याद में रहे, काय के लिए करना है त्याग, मेरा अपनी निजी संपदा पाने के लिए मुझे त्याग करना है। और चूंकि ये जो विषय कषाय हैं जिनको मैं त्याग कर रहा हूं, किसी भी चीज को देने में विषय कषाय कम होती भैया, इसलिए मुझे विषय कषाय, और ये विषय कषाय मेरा अहित करने वाली है ऐसा विचार करके मैं छोड़ रहा हूं। जैसे कोई निस्सार को छोड़ता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन निस्सार को छोड़ भी क्यों रहा हूं, क्योंकि मेरी अपनी निजी संपदा का मुझे भान हो गया इसलिए छोड़ रहा हूं। राग आग दहे इताते, इसलिए समामृत मेरा अपना स्वभाव, उसकी प्राप्ति के लिए और किसी चीज की प्राप्ति मेरा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ जो है मुझे समामृत चाहिए, अपने उस समता रूपी परिणाम को प्राप्त करना है, वो ही मेरा उपकार है, और दूसरे का उपकार भी उसके साथ में होवे। अपने विषय कषाय छोड़े से अपना कल्याण होता है, और अपने विषय कषाय छोड़ने से दूसरे को कल्याण होता है। विचार करना, अपनी विषय सामग्री अपन दूसरे को दे देते हैं तो दूसरे का भी तो उपकार होता है, नहीं धन पैसा इत्यादि दूसरे को, अपना लोभ हमने छोड़ा, लोभ हम छोड़ते और देखो दूसरे को उससे लाभ होता, ऐसा हिसाब है इसका। जितना हमारा लोभ कम हुआ, हमारी कषाय कम हुई,
और दूसरे का लाभ हो रहा, बताओ आप। हमारे कषाय कम करने से दूसरे का लाभ, हमारे विषय सामग्री छोड़ने से भी दूसरे का लाभ। और अगर ऐसा भाव नहीं आवे, यही भाव आ जावे कि दूसरे का उपकार करना है इसलिए मुझे अपनी विषय सामग्री छोड़नी है। कई बार होता है ऐसा, दूसरे से बहुत प्रेम हो गए, अपने मित्र से बहुत प्रेम हो गए, वो जरा इशारा करे कि प्रेम के वशीभूत होकर के छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते। हमारी विषय कषाय ऐसे कम हो जाती कि नहीं, इसलिए मुझे फिर वापिस आऊं उसी पर कि पर प्रीति करण अति सर्जनम। दूसरे के प्रति जब हमारे भीतर अनुराग उत्पन्न होता है तब हमारी विषय कषाय कम होती है, उसका उपाय ये है, बताइए आप। और या कि हमारी विषय कषाय कम हो गए तो दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न हो और उसको हमने अपना सब कुछ दे दिया, किस तरह की ये प्रक्रिया, कहने को त्याग है जो कि बहुत कठिन माना जाता है। किसी से भी कहो कि त्याग तो वो कहते भाई हमारे बस को नहीं, लेकिन ये बताइए कितनी आसान सी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को अपन अपनाएं। एक और उदाहरण सुनाएंगे, दो हो जाए अब, कल को आज और कल को कल ही सुनाएंगे फिर। एक भिखारी था, भिखारी तो नहीं कहना चाहिए, बहुत सज्जन ही था वो, साधु पुरुष था। साधु पुरुष और भिखारी में इतना ही फर्क है कि एक की आकांक्षा बहुत रहती और एक ने अपनी आकांक्षाएं सब छोड़ दी, इतना ही फर्क है। और बाकी बाहर से तो दो ही एक से दिखते हैं, कहा है धली जीव तक नहीं है धरवे कछू, बताओ है कछू जीव नहीं है। भिखारी के पास तो फिर भी होगा थोड़ा बहुत। तो वो एक राजा के पास रोज जाता था और उनको एक फल देता था और राजा ले लेते थे फल, लेकिन कभी राजा ने खाया नहीं। उनके पास तो ऐसे बहुत देने वाले आते थे, इसलिए सुमंत्री को पकड़ा देता था। सुमंत्री को एक दो दिन तो मंत्री ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो रोज फल देने आने लगा तो मंत्री का ध्यान गया कि भाई ये राजा को रोज फल देता है, कोई बात नहीं हो कल के दिन बात खुले और मुसीबत आ जाए कि मंत्री को दे देते। मंत्री ने भी उसको फेंका नहीं, ने खाया, एक कमरे में जाकर के रखना शुरू कर दिया। 6 महीने गुजर गए, रोज वो लाता था, एक फल देता था और राजा प्रसन्न होकर के उसको दो शब्द कह के और मंत्री के हाथ में देता, मंत्री जाके कमरे में रहे। अब क्या स्थिति बनेगी उन फलों की, सबरे सड़ गए भी कमरा में धरे। एक दिन जब 6 महीने के बाद उसने फल हाथ में दिया तो राजा के लिए अब जरा बात स्ट्राइक करी कि रोज मुझे फल देते हो, एक ही प्रकार का फल, आखिर बात क्या है। कुछ नहीं राजन, आप स्वीकार भर करिएगा। राजा ने स्वीकार करके मंत्री से कहा कि मंत्री जी कुछ ना कुछ इसमें बात होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि अब वो तो सारे फल फेंक दिए गए, राजा को तो यही मालूम था, उन फलों को देखना चाहिए अपन को क्या है उसमें ऐसी बात। तो सारे फल तो रखे थे, सड़ भले ही गए थे, लेकिन जब खोला गया तो उन पानी पानी हो गए उन फलों के बीच में, और एक एक मोती एक एक हीरा चमक रहा था। और वो जो फल अभी हाथ में था उसको भी जब तोड़ करके देखा तो उसके भीतर भी एक चमकता हुआ हीरा। राजन ने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। बोले राजन रोज आपको मैं ये फल भेंट करता था कि किसी दिन तो इस फल को बाहर से न देखकर आप भीतर देख लोगे, और जिस दिन आप भीतर देख लोगे मेरा काम हो जाएगा। ये तो एक दिन सड़ करके गल करके और नष्ट हो जाएगी, जैसे कि ये आम एक दिन सड़ के नष्ट हो जाएगा, खा लिया जाए तो भी और किसी को दे दिया जाए तो भी, या कि रखा रहे तो भी, हर स्थिति में। लेकिन इसके भीतर जो चमकता हुआ हीरा है वो हमारे भीतर की निर्मलता का प्रतीक है, हम इससे सड़ने से पहले इसका सदुपयोग कर लेवे, दूसरे का मुंह भी मीठा कर देंगे, अपने इस शरीर की प्राप्ति हमें हुई है तो दूसरे का जीवन भी सार्थक हो जाए हमारे शरीर के द्वारा, और हमारी चेतना भी इतनी निर्मल हो जाए जैसे इसमें हीरा रखा हुआ। हम आपको ये संदेश देना चाहते, बताइए कितना बड़ा दान है ये। हम इस तरह से भी दान दे करके दूसरे को संदेश दे सकते हैं। वास्तव में जो परोपकार के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए अपना त्याग किया जाता है, उसी से प्राणी मात्र का कल्याण भी होता और स्वयं का कल्याण भी होता है। तीर्थंकर प्रकृति ऐसे विरले जीवों को ही जो ऐसी भावना भाते हैं उनको बंधती है। अपन सब उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।
ए गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, गुरुवर प्रणाम। मिथ्या तम नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, अपर वास वेखो, मानु शिव कानी है के जताए वेखो, काहू न सताए वेखो, भव्य हो रे आनी है जावानी के जानते सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तुम लो, जिनवानी भारती जो तेरो शरणा गए सुभाने सुखे मंगल गान रवा कुले इन ग्रहे मुनि राज
क्षमा सागर जी महाराज के पावन पुनी चरणों में, ओम निश्वर पूजे स्वागत जी भक्त सागर जी महाराज के पावन पुनी चरणों में, अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्य गर्व स्वामी की।